भगवते वासुदेवाय।
अष्टम स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 50। अचक्षुरंधस्य जथाग्रणी कृता तथा जनस्याविदुषो बुधो गुरुः। त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षण मृतो गुरुर्नो स्वगतिं बुभुत्सताम्। अचक्षुरन्धस्य जथा गृणीकृत तथा जनस्याविदुषो बुधो गुरु। त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षण मृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्। शब्दार्थ अचक्षु, जिसमें देखने की शक्ति ना हो। अंधस्य, अंधे पुरुष का। जथा, जिस तरह। अग्रणी, आगे करने वाला नेता। कृता, स्वीकृत। तथा, उसी प्रकार। जनस्य, ऐसे व्यक्तियों का। अविदुषा, जिसे जीवन के लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं। अबुधः, मूर्ख। गुरु, गुरु। त्वम, आप। अर्कदृक्, सूर्य के समान प्रतीत। सर्वदृशां, ज्ञान के सारे स्रोतों में से। समीक्षण, पूर्ण दृष्टा। वृत, स्वीकृत। गुरु, गुरु। ना गति, कोई गति नहीं। बहुत सताम, ऐसे व्यक्ति को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक या नेता मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, वे किसी न किसी धूर्त, मूढ़ तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तात्पर्य, अज्ञान में डूबा रहने एवं जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो शब्दों की जादूगरी जानता हो और ऐसा जादू दिखा सकता हो जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु, क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बनाना जानता है। क्योंकि ऐसे शिष्य तो भगवान की शरण में जाए, यही गुरु का लक्षण है। इसी सिद्धांत का महाप्रभु ने दिया, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दूसरे शब्द में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे को गुरु न बनाए जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन न करता हो। हरे कृष्ण। आज रविवार के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में श्री श्री राधा राधिका रमण के दरबार में जो आप लोग श्रद्धालु भक्तगण मातृगण उपस्थित हैं, सभी को इस्कन पंजाब विभाग की तरफ से विशेष स्वागत। हरे कृष्ण। तो हम ये उद्गार सुन रहे हैं महाराज सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा भगवत उपासना करते करते भगवान को दर्शन किए, अनुभव किए, उनसे बातचीत किए, उनसे उपदेश सुने, ज्ञान प्राप्त किए, केवल ज्ञान में पूर्ण अनुग्रह प्राप्त किए, अनुग्रहित हुए, कृपा को प्राप्त किए, उसके बाद में ये वक्तव्य देते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सूर्य के समान सर्वविदित हैं, ऐसे कोई नहीं जो सूर्य को नहीं पहचान सके, उनका किरणें दिशाओं तक आलोकित करता है, सूर्य उदय होने से पहले अंधकार चला, तो सूर्य आया नहीं, उदय नहीं हुआ, उदय होने से पहले अंधकार दूरीभूत हो जाता है, वो ऐसे प्रभा संपन्न, ऐसे तेज संपन्न सूर्य के समान आप प्रकट है साक्षात। लेकिन क्या करें प्रभु, आपके सृष्टि में तो अजब नजब लोग होते हैं अनेक प्रकार में, एक ऐसे लोग होते हैं जो अचक्षु, क्योंकि सूर्य को हो, चंद्रमा को हो, किसी को कौन सा इंद्रिय है, चक्षु, जब चक्षु रे सविता सकल ग्रहाणां, भगवान के भी जब देखते हैं दुनिया को सूर्य के द्वारा देखते हैं, भगवान की आंख है सूर्य चंद्र, तो बोलते हैं कि जिसके चक्षु नहीं है, चक्षु नहीं है, वो आपको कैसे देखेंगे, वो कैसे देख सकते हैं आपको, वो क्या करते हैं, देख तो नहीं पाते हैं, ऐसे अचक्षु लोग अंधस्य अग्रणी, एक आपने में लीडर बनाते हैं, कोई ऐसे अंधे व्यक्ति को चुनते हैं, बोले चलो हम भी ऐसे चलो मिलेंगे, आप देखेंगे कहीं कहीं 10-5 अंधे बैठ करके एक साथ भजन करेंगे, एक साथ भीख मांगेंगे, वो अपना यूनियन करते हैं, सभी अपना अपना यूनियन करते हैं, बोले चलो हम भी चलो मिल जाते हैं, हाथ मिला, तो उनमें से कोई एक चलाक होगा तो उसको नेता बनाएंगे। तो अंधस्य अग्रणी, लेकिन ये तो चक्षु नहीं है, अंधा है, उनसे भी ऊपर में और प्रकार के लोग हैं जिनको बोलते अविदुषः, अविदुष लोग भी आपको नहीं जानते, अविदुष कहने का मतलब उनका आंख तो है, ऐसा नहीं कि आंख नहीं है, दोनों आंख है, देख सकते हैं, लेकिन देख कर पश्यत भी न पश्यति, देख कर भी के लक्ष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं, क्यों जी रहे हैं, दे हैव नो आइडिया, उससे भी और भद्दे प्रकार के आदमी उनको मूर्ख बोले, बस खटेंगे खाएंगे बस इतना, उनके जीवन में और कुछ जानते नहीं, शास्त्र पढ़ना करो क्या है, सुबह 7 बजे घर से निकलेंगे टिफिन बॉक्स लेकर के, 8:30 बजे रात से आएंगे, फिर सोएंगे, जो अपना शारीरिक रात्रि काम, फिर उठ कर बस संडे के दिन बोलते हो आज छुट्टी मिला टीवी देखेंगे बैठ करके, 1 बजे उठेंगे नहा धोकर टीवी देखेंगे, बस फिर उठ करके वीकेंड में फिर वही काम चल, तो उस प्रकार के लोग केवल अपने जीवन के मूल्य को इतना जानते हैं, खटेंगे पेट भरेंगे, और जो अविदुष हैं, मतलब वो शास्त्र पास्त्र पढ़े हैं, थोड़ा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ करके जीवन के लक्ष्य यही समझे कि प्रमोशन पाना, बड़ा होना, वो लोग तो प्रमोशन पाने की इच्छा भी नहीं रखते, ये बोलते नहीं और बड़े होंगे, कैसे भी कैसे कपट करके, झूठ बोल करके, अन्याय करके, जेन तेन प्रकारण मैं सबसे बड़ा बनूं, मैं ज्यादा भोग कर लूं, मैं ज्यादा प्राप्त कर लू, एक लक्ष्य लेके चलो, बस जीवन के एक ही लक्ष्य। तो इस प्रकार लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य आपको जानना, आत्म साक्षात्कार करना ये नहीं पता, इसलिए आपको स्वीकार नहीं करते प्रभु। लेकिन मैं भली भांति मैं जानता हूं इस जीवन का, विशेष करके मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य आपने को समझना और आपको समझना जानना, आत्म साक्षात्कार करना। तो इसलिए मैं तो सबसे उज्ज्वल सूर्य की तरह आप जो दिखाई पड़ते हैं, आपको ही मैं अपना गुरु मानता हूं। आप मुझे ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं, मुझे स्वीकार भी कर चुके हैं, अनुग्रहित कर चुके हैं, मैं तो केवल आपको ही मानता हूं इसी ज्ञान का। राजा सत्यव्रत इतने बड़े स्थिति में रह करके इस बात कहते हैं, वो दुख प्रकाश करते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार वर्ग के लोग हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि ऐसे संसार में लोग होते हैं बेचारे, हम जानते हैं चमत्कार को नमस्कार, कोई थोड़ा मैजिकल कुछ चमत्कार के हरी, आजकल चमत्कार भी नहीं, किसका पेट की बीमारी है को ठीक कर दिया ना, कोई जड़ी बूटी देखी थी भगवान है, सीधा गुरु नहीं सीधा भगवान बोलेगा, तो सीधा भगवान मेरे बीमारी ठीक कर दिया क्या बोलते भगवान है, अरे भगवान कुछ काम नहीं थे बीमारी ठीक करने के लिए सीधा भगवान मान लेते। कोई थोड़ा चमत्कार करें कुछ भी करें उसको मान ले, सब बोलते सब तो जादूगरी में फंसाते हैं लोगों को, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। अच्छा क्या समझा, कुछ समझ में नहीं आया, इतने बढ़िया बोले, इतने बढ़िया बोले, कुछ समझ में नहीं आया ना? क्या कहूं, क्या खूबसूरत प्रवचन था, इतने बढ़िया बोले, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसे ही बोल करके तुम्हें प्रशंसा करते हैं और क्या कह इस पर लोग भी ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, हम ठगना चाहते हैं तो ठगने वाले घूमते रहते हैं, मौका देख करके फटाक से ठगते हैं। क्यों, क्योंकि जीवन के लक्ष्य के बारे में किसी को अवगत नहीं, किसी को पता नहीं, अगर पता होता तो इस प्रकार ना करते। भगवान भगवत गीता में इस प्रकार के स्टेटमेंट के दिए हैं, तो सत्यवत मुनि दे रहे हैं, भगवान स्वयं दिए हैं स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि नामान दुष्कृति नो मोरा प्रकट दंते, बोले अर्जुन मेरा पास आते नहीं है, मेरे ही सृष्टि में रहते हैं, मैं उनको सप्लाई देता मेंटेन करता हूं, क्यों नहीं आते, ना एक तो दुष्कृति न है, चार प्रकार के दुष्कृति नहीं, पहले सूर्य बोले सुकृति न, चार प्रकार ये दुष्कृति नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये सौभाग्यवान है, दुर्भाग्यवान है, कौन कौन दुष्कृति न है, नमान दुष्कृति सबसे नंबर वन बोले मूढ़ा, यहां मूढ़ा शब्द आया, बोले मूढ़ा मूढ़ नहीं आएंगे, और नराघमा और माया अपहृत ज्ञान, ये तीन प्रकार के कोटि के लोग दुष्कृति न है, दुर्भागा है, दुष्कर्मी है, वो नहीं आएंगे मेरे पास, वो नहीं आते। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि सारे दुनिया में सारे लोगों को पता है कि किसी संसार भव बंधन से दुख से मुक्त होने के लिए कोई और उपाय नहीं भगवत भजन के बिना, भगवत शरणागति के बिना। बोले सारे शास्त्र में लिखा है, सद ग्रंथ में लिखा है, सदपुरुष साधुगण सब कहते हैं, गुरुजन महापुरुष गण कहते हैं, वो लोग करके प्रैक्टिकल करके देखे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य लग रहा है, जब से दुनिया बना है अभी तक कोई एक भी ऐसे उदाहरण नहीं है कि कोई भगवान हरि के अलावा और किसी का शरण में गया और उसका जीवन कल्याण हो गया, उसका उद्धार हो गया, एक भी एग्जाम्पल नहीं। बहुत बड़े बड़े हिरण्यकश्यप रावण कंस कितने लिस्ट पड़ा है, जिस किसी ने भी हरि के अलावा और किसी के शरण लिया उसका उद्धार कतई नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो नहीं पाया। और दुनिया जब से बना है अभी तक एक भी उदाहरण का नहीं, मैं निकम्मा कितने किस प्रकार के आदमी क्यों ना हो, अरे
हरि के फल।
लेकिन फिर भी हम सब नहीं लेते, 90% लोग नहीं लेते बोली, क्यों? भगवान इसी का उत्तर देते हैं, क्योंकि वो दुष्कृति नहीं दुर्भाग्य है। किस प्रकार दुर्भाग्य? न तो मूढ़ एक नराधमा और माया अपहृत ज्ञान। ज्ञान तो है, वो ज्ञान सब माया ने चुरी करके लिया है। सारे अज्ञान भर के बड़े ज्ञानी समझते हैं अपने, सारे अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का असली पहचान क्या है? ज्ञानम ददाति विनयम। जिनके पास ज्ञान है वो तुरंत झुक जाएगा, हमल हो जाएगा, विनयता होगा। लेकिन जो ज्ञान पा करके आई एम सो एंड सो बोली, अज्ञान है, ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान की सिद्ध, ज्ञान कभी भी आपको दम्भ अभिमान ना देगा, वो हटा लेगा, उससे हटा लेगा। नम्रंती फलिनो वृक्षः नम्रंती गुणिनो जनः। जैसे फलवती वृक्ष के शाखा प्रशाखा झुक जाते हैं, इसे गुणवान जनों ज्ञानवान गुण झुक जाएंगे, तो ऐसे दम्भ नहीं दिखाएंगे। आजकल जो दम्भ प्राप्त करते हैं डिग्रियां लेकर के, इस सारे कोरे अज्ञान है, कुछ नहीं, वो नहीं समझते हैं ये ज्ञान कितने दिन का है। एक्सपायरी डेट आने वाला है, उसके बाद में जयराम जी की फिर विशिष्ट पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा। कि मैं सारे कचरा पट्टी में जाएगा, बोले ये तो एक्स, आपके डिग्री के पीछे क्या लग जाएगा? एक्स गया, फिर वाई करो, कुछ काम के नहीं है तेरे पढ़ने। लेकिन फिर भी इस प्रकार के लोग जान करके, सुन करके, देख करके, समझ करके भी कृष्ण के शरणागत नहीं होते हैं, क्योंकि इतने कोरे अज्ञान है। एक तो भाग्यहीन है, अज्ञानी है, जीवन के मूल्य को नहीं समझते हैं। और जो थोड़े बहुत कुछ जानते हैं, चालाकी दिखाते हैं, तो वो फंसते जाकर के चला, ऐसे कुछ चतुर व्यक्ति के पाल में फंस जाते हैं जाकर के, चतुरों के पाल में फंस जाते। एक बार एक सत्य घटना है, 1977 का बात है, प्रभुपाद जी ने थे 76-77 समय में, माघ महीना में इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने यद्यपि भारी बीमार थे, हैदराबाद से सीधा बोले ना ना ना, ये भारतवर्ष का समस्त साधु संत छूटेंगे, मैं जाऊंगा। तो उनको लेकर के आए, लास्ट स्टेज था प्रभुपाद जी, इतने अवस्था थे, लेकिन फिर भी आए। उनके साथ में 40 करीब विदेशी शिष्य थे, सब गोरे तक तक, बिल्कुल अभी देवलोक से उतरे जैसा लग रहे थे, ऐसे चकाचक। विदेशियों में सेव हेड करके तिलक लगाते हैं, और उनका तो फिर अलग कुछ दृश्य होता है ना। तो ऐसे देखते तो सारे मीडिया वाले उनके चारों तरफ घूमते थे। हाँ, और सामने प्रभुपाद जी बिल्कुल 4.5 फुट का हाइट, ऐसे निवृद्ध, वही चलते हैं प्रभुपाद जी, चलते ना कभी ऐसे चलते आराम से। तो उनके पीछे चारों तरफ व्हाइट एलिफेंट 40, उनको व्हाइट एलिफेंट बोलते, 40 चलते हैं। आप वे गंगा, आप कुंभ मेला तो इलाहाबाद में गए होंगे ना, वो बीच में होता है, गंगा जी के दोनों धारे उसके बीच में होता, टापू में विशाल खंड है भूमि, उसी में होता। इस तरफ से आप गंगा पार करना पड़ेगा, इस तरफ से गंगा पार करना, उस तरफ से जमुना पार करना पड़ेगा, बिना नदी पार किए जा नहीं सकते कुंभनगर में। तो कई जगह में तो प्लाटून ब्रिज, लेकिन तभी जब हमने प्लाटून ब्रिज इतने नहीं बना था, नौका लगाया गया था, कई जगह में नौका सब लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से भी, और उन्हें कोई लोग भी देते हैं थोड़ा सा, दो रुपया का चार्ज था, 2 रुपया दो पारी करो, पर हेड 2 रुपीज। तो और कई प्रकार से भारत में सिद्ध जोगी सब आते हैं कुंभला में। जब प्रभुपाद जी स्टेशन से उतर करके जा रहे थे कुंभनगर में, तो इस समय और एक जोगीराज वो पधार रहे थे, वो भी जा रहे थे, उनका पीछे 200 लोग चल रहे थे, और वो बड़े चटा चूट दाढ़ी, उनके पीछे भी दाढ़ी वाले, निदाढ़ी वाले जो भी हो चल रहे थे लोग उनके पीछे। और वो देख रहे थे, भाई हमें 200 हैं, हमारे बाबा दाढ़ी वाले हैं, पर ये दाढ़ी फाड़ी कुछ भी नहीं, सिलपट पूरा क्लीन हेड, क्लीन हेड पाछे ये सफेद हाथी 40, ये तो सारे मीडिया उनके पीछे, पर हमको कुछ पूछते नहीं। तो
उनको लग रहा था, बोला ये क्या, हम जो से कुछ नहीं देखते कोई हमको। तो गए जाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे, एक ग्रुप भी पहुंचे, वो ग्रुप भी दोनों एक साथ पहुंचे। पहुंच करके प्रभुपाद जी ने बोले कि नौका से बात करो, हम एक साथ में चले, बड़ा नौको एक साथ में एक ग्रुप में 40 लोग चल जाएंगे, चल जाएंगे, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं, 2-2 रुपया पर हेड पेमेंट कर दिया। नौका में बैठ रहे थे तो वो जो जोगी बाबा था वो आया, नौका में नहीं आया, बोला मैं पानी में चलकर जाऊंगा। वो चल करके गया पानी के ऊपर, जिस स्थल भाग में चलते हैं ऐसे चलते चलते गया, और उनका जो फॉलोअर थे वो सब 4-5 नौका में चढ़कर गए। गए जाकर पहुंचकर इतने हल्ला गुल्ला किए कि वो मीडिया को सब बोला क्या देख रहे हैं, देखो हमारे गुरुजी ने पानी के ऊपर चल कर कहा, इतने बड़े नाराबाजी हल्ला किए कि देखो इतने महापुरुष है, इतने बड़े जोगीराज स्वयं 1008 स्वयं श्री, ऐसे ऐसे करके बोले, पानी में चल कर के आए गंगा जी के ऊपर। आप बाद बाजू बाजू चल रहे थे, इंटरनेशनल आचार्य और नेशनल आचार्य आप वो आकर के सह मीडिया वाले क्या देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करके गाली देख रहे, क्या है तुम्हारे गुरु, देखो नौका करके 2-2 रुपया करके आया पार का, हमारे गुरु से देखो चल करके आया गंगा जी में ऐसे करके। आप तो उनको मिल गया पॉइंट, ऐसे चढ़ गए, अभी तक तो बड़े बोर हो रहे थे, अब ऐसे बोले, वो बेचारे इंग्लिश ही बोल रहे थे, कुछ लोग जानते थे इंग्लिश, तो जो विदेशी शिष्य थे आकर प्रभुपाद जी के पास बोले, प्रभुपाद ना क्या ना वो लोग हमको ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप तो नौका में आए हमारे साथ, हमारे वो चल कर के आया, मुझे बोलते ये बड़ा इतने सारा करते हैं आप। प्रभुपाद जी बोले इस रास कर लो, बोले क्या, बोले मेरा जीवन के उद्देश्य नहीं कि 2 रुपया के लिए खर्चा करूँ, बोले क्या, बोले इन्होंने जो उनका गुरु जी है, बोले 50 साल तक लगातार साधना कर करके जो प्राप्ति किया, मैं भी वो पानी के ऊपर चल कर आया ना, कितना कीमत था उसको, 2 रुपया, बोले मैं भी उसमें, बोले मैं भी गंगा पार किया और भी गंगा पार किया, काम तो एक ही हुआ, लेकिन मैं 2 रुपया पार किया, वो 50 साल का सारे योग साधन लगा कर पार किया। बोले मैं इससे बुड़बक नहीं हूँ, 50 साल लगाऊंगा 2 रुपया के लिए। अरे बाप रे बाप, वो बोल दिया, सारे विदेश लोग ठोट ठोक करके हंसी बोल करके उसको अनाउंस कर दिया, सारे उनका मुंह नीचे हो गया, ये सही नहीं है, सारा जिंदगी बर्बाद कर दिया है 2 रुपये के लिए, एक पानी के चलते जाना था और क्या कर सकता, वो तो आराम से पार के, बोले हम तो पैर भी जूता भी नहीं उतरे आगे, क्या पड़ी हो। तो यही है, अब उदाहरण जब बुद्धिमान लोग नहीं है तो इसी को इसी प्रकार चमत्कार की थोड़ा ये कर दिया ऐसे कर दिया उनके, अरे क्योंकि जीवन के मूल्य को नहीं समझते कि जीवन के लक्ष्य नहीं है कि पानी के चाय ऊपर में चला जाना कि ये कर देना वो कर देना, ये कोई सिद्धि प्राप्त कर लेना जीवन के लक्ष्य नहीं। जबकि शास्त्र में कहा गया जो सिद्धि कामी होते हैं, जो मुक्ति कामी सिद्धि कामी मुक्ति कामी होते, जो भोग की इच्छा रखते हैं, नाना प्रकार भोग पदार्थ चाहते हैं, मैं सुखी बनूंगा भोग करूंगा, जो मुख्य नहीं झंझट हो गया बड़े तकलीफ यहां से छूटूं यहां से मुक्त हो जाऊं, और जो चाहते मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं दुनिया को ऐसे ऐसे नचा दूं ऐसे सिद्धि, ये तीनों प्रकार की लोग जो सिद्धि चाहते हैं, जो मुख्य चाहते हैं, जो भोग चाहते हैं, सकल ही अशांत, उनका शांति का मिल ही नहीं सकता, बहुत हमेशा टेंशन रहते बेचारे, मरेंगे तो सही हाकार करके, लेकिन जब तक जिएंगे तभी भी अशांत रहेंगे, क्योंकि आशा वैक्टर नहीं होता, नेवर अनएंडिंग, और उनको ये मिल गया, अरे क्योंकि कहीं ना कहीं तो 21 से 7-22 भी होता है, वो इतने सिद्धि प्राप्त कर रहा है, देखेगा कि अरे उनका पास ये भी है मेरे पास नहीं, लगेगा उसका पीछे किसी उसको भी कर लो ये भी कर लो, ये मनुष्य का स्वभाव है ना। आप बिल्कुल समर्थ है, आपका पास अपने कोठी है, गाड़ी है, खान पान की व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं होंगे, क्योंकि अगर पड़ोसी के पास अगर एक दूसरा नया गाड़ी आ गया मर गया, उसका क्यों आया, वास गया, आपके शांति छीन गया, टेंशन आ गया, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तुरंत, जेन तेन प्रकार में आप एक लेकर आएंगे ओ शांति, भले पार्किंग की जगह ना मिले, लोन करके लेकर आए तो लाए ला कर रखेंगे, और उसका भी शांति खत्म हो जाएगा, बोले वो आ गया उनका भी बस, इसी कहते मच्छर था, ये भाव से सब हम लोग जीते रहते हैं, कोई जीवन के उद्देश्य को नहीं समझना चाहते हैं, कि खैर क्यों मुझे जीवन की ये जो शरीर किस लिए मिला, किस काम के लिए मिला। क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया में जितने प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, है ना। अब कोई फ्लैट घर कोठी बनाओ, उसके बनने से पहले आर्किटेक्ट के पास उनका पेपर रहता ना, उसको कोने कोने का ज्ञान रहता है आर्किटेक्ट को, वो जाएगा ना इसमें। उसके पहले इंजीनियर आ गया, उसके ठेकेदार, ठेकेदार बेचारा काम करता है, ईंट सीमेंट लाने से पहले उनको पहले पूरा बिल्डिंग का पाई पाई ज्ञान होता है, क्योंकि उनके पास वो बनने के बाद ये होता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी वस्तु लीजिए, कोई वस्तु का बनने का पहले उसका किसी प्रकार से उसका उपयोग होगा, कहां पर थी, सारे डिटेल होकर फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट। जब यही नियम है तो हम जितने यहां प्रोडक्ट बैठे हुए हैं, चाहे मेल प्रोडक्ट हो चाहे फीमेल प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट यहां बैठे हैं प्रोड्यूस हुआ है, तो हमारा जो ब्लूप्रिंट तो पहले सेट हुआ ना नहीं। वाई फॉर क्यों प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था, किस उद्देश्य से, किसी उपयोग के लिए किया गया, किसी को पता है ना, कोई जानने के लिए प्रयास किए न। अरे भैया तो किसी यूज के लिए बना है तुझे पता ही नहीं, तू व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहा है, आधा जिंदगी बिता दिया तुझे पता ही नहीं किस लिए बना था तुम्हें, यही है दशा। सारे कोरे पागल पर और बोलते हैं कि हम सही से, अरे तुझे अब तक पता ही नहीं, अभी तक पता नहीं कि क्यों तूने बना। अगर बड़े बड़े आजकल तथाकथित जो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े डिग्री बहुत टॉप क्लास प्राप्त किए हैं, सब उनको पूछो, कई कई डिग्री, कई एग्जामिनेशन, कई इंटरव्यू क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनके सामने केवल सर एक बात पूछो ना, क्या सर आप क्यों जी रहे हैं, एक प्रश्न कर देना, बोले अरे ये क्या प्रश्न पूछ दिया, अरे ये किसी प्रश्न पर मैं क्यों जी रहा हूं, क्या उत्तर दे सकते हो क्यों जी बोले सारे लोग जीते मैं जीता हूं, क्यों जी रहे की बात होता है क्या, सब जी रहे मैं जी रहा हूं। अगर पूछे भैया गुस्सा मत करो, ठीक है मैं समझ रहा हूं सब जी रहे हम जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, अरे ये भी प्रश्न की बात है, कब तक जिएंगे, अरे जब मरूंगा तब तो जिएंगा और क्या, मरने वाले तो जीना पड़ेगा ही, मरते दम तक। देखिए यही उत्तर देंगे और क्या बोल सकते हैं, यही जानते हैं जीवन के उद्देश्य क्या है, मरना बस, बना हो मरने के लिए, मरेगा तो कहे कि डिग्री किया, जो डिग्री नहीं किया वो नहीं मरेगा क्या, इतने पैसा करके टेंशन उठा पढ़ाई के, जो नहीं पढ़ा वो भी मरेगा, तू ही मरेगा, तो जो लक्ष्य भी सेम है तो कहे कि ऐसा कर रहा है तुम्हें, नहीं बिल्कुल ज्ञान है, और इसी को हम समझते हैं सारे दुनिया में ज्ञान। यहां जो तीन प्रकार के कोटियों की इस श्लोक में बात आया, एक अचक्षु हो भली प्रकार से इसका आईसाइट नहीं है, और एक आया अविदुष और एक अबुध, अबुध बोलते मूड और अविदुष बोलते जीवन के लक्ष्य को जाने बिना, तीन प्रकार के कोटियों के लोग हैं। तो एक कोटि के लोग जो पहले होते हैं गुड बेटर बेस्ट ऐसा ही, ऐसे ही नीचे की तरफ से ऐसे होते, जो जिनका आंख सचमुच नहीं है वो लोग तो फिर भी अच्छे हैं, बेचारे देखते नहीं है, ये संसार की चाक चक्के को देखे नहीं है, वो तो अपने आप में झुके रहेंगे, ठाकुर जी ने हमको दृष्टि शक्ति नहीं दिए, वो बेचारे घमंड नहीं करेंगे कि अंधा घमंड थोड़ी करेगा ना, बोलेगा आप तो देखते, मैं देख नहीं पाता हूं, सूरज चंद्र आकाश कुछ नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऑटोमेटिक नम्र होगा। जिनके सचमुच आंख नहीं है वो हमसे अच्छे होते हैं, जैसे सूरदास जी हैं, बिल्ले मंगल ठाकुर हैं, अभी भी हमारे एक वर्तमान आचार्य हैं रामानंद संप्रदाय में, मालूम है ना, बहुत बड़े विद्वान पुरुष है, इतने बड़े भारी विद्वान है रामभद्र आचार्य जी, प्रचंड विद्वान है, उनके लिखी हुई संस्कृत की व्याकरण पीजी क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी शक्ति भी है बेल में पढ़ करके, वो पंडित चार रहते हैं, वो बोलते हैं वो लिखते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं, सुनते हैं। जो एक इंद्रिय जिसका नहीं रहता दूसरे इंद्रिय पावरफुल हो जाता है, एक मशीन काम नहीं दूसरे मशीन वो शक्ति उसमें चला जाएगा, सुनने में बड़ा तेज होंगे, बड़ा तेज होंगे सुनने में, आंख नहीं होती। तो जिनका आंख नहीं रहता कान पर तो सुने। एक्चुअली जो ज्ञान प्राप्ति के जो मशीन हमारा शरीर में फिट किया गया, ज्ञानेन्द्रिय में जो मुख्य ज्ञान प्राप्ति के इंद्रिय जो है वो कौन सा है? आंख, कान है भाई। आपका नाम क्या है किसे पता चला? आंख में पता चला, नाक में, मुख में किसे पता चला? कान में। आपका घर क्या है, आपके पापा है, ये मम्मी है, ये दिल्ली है, पंजाब है, किसे पता चला? आंख से पता चला नहीं, कान से। अभी तक जो कुछ हम जाने और जानेंगे, इसलिए वैदिक शास्त्र का एक नाम है श्रुति, सुन करके जानते हैं, श्रवणम, यही एक माध्यम है जानने का। तो इसलिए आंख ना हो तो नहीं, कान होना चाहिए। पश्यन्ति ही कर्ण चक्षुषा, जो कान के आंख में देखते हैं, कान के द्वारा देखते हैं, उनका देखना बिल्कुल पक्का है। जो आंख में देखते हैं वो कच्चा है, क्या देखेंगे हम? सूरज को आकाश में देखते हैं कितना बड़ा दिखता है, डेली देखते ना कितना बड़ा, यही साइज हमारे हाथ देखे थाली के बराबर, लेकिन सचमुच सूर्य के थाली के बराबर है? सूर्य को इस हमारे पृथ्वी लोक से 13 लाख गुण साइज में बड़ा है, और हम बोलते ही सूर्य, अरे कितने गलत हम देख रहे, क्या देखेंगे? तो सुन करके वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर, देख करके नहीं। तो हम देखते हैं सचमुच जिसका आंख नहीं है वो सुनने में होशियार होते हैं और सुन करके अपने जीवन साधन कर लेते हैं, सचमुच वो सीरियस होते हैं भगवान के, स्वतः उनके भगवान के प्रति भाव आता है, क्योंकि मैं तो भगवान प्रभु नहीं दिए मुझे और क्या कर सकता हूं, देख नहीं सकता दुनिया को तो भजन ही करूंगा, है ना। कई प्रकार से बच जाते हैं माया के मोह से, अजामिल फंसा आंख के बजा नहीं, बिल्ले मंगल जान बूझ कर आंख फूटती, हाँ तब जाके महापुरुष बने। तो फंसते नहीं, कान में इसे फंसाता नहीं, कम से कम आप जब सही सुनेंगे तो उधर हो जाएगा। तो इसे देखते हैं जिनका आंख नहीं है वो बेचारे, भगवान आप विराजमान है लेकिन नहीं देख पाते, लेकिन आंख में क्या भी देखेंगे बिना सुने, लेकिन सुन कर देख लेते हैं, उनका तो उपाय है बच जाएंगे। लेकिन सबसे गड़बड़ यही है जो अंधे हैं, अंधे केवल आंख के बिना अंधे नहीं, अंधे होते हैं जो कामांध है, मदांध है, धनांध है, इस प्रकार का अंधे, जानते ना, जिसको काम का वेग इतने अटैक किया है वो दिखने भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखा पड़ेगा। वही बिल्लमण ठाकुर के चरित्र में आता है, उन्होंने एक बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे, विवाहित थे, बहुत बड़े उच्च कोटि के गायक थे उन्होंने, उनके घर में उनके पिताजी के देहांत हो गया, वो चिंतामणि के पास जा करते थे, वैश्या के पास, चिंतामणि के प्रति इतने आसक्त हो गए थे, घर में उनका पिताजी मर गए, सारे घर वाले वो एक लोग बैठे थे, बोलते हैं कि शुद्धि क्रिया करो कुछ, नहीं नहीं मुझे जाना है, जाना है करके इतने, और पत्नी की तो पूछ नहीं रहे थे, पत्नी देखा ये हालत हो गई तो पत्नी सुसाइड कर ली, नदी में कूद करके जाकर, नदी में कूद करके मर गई। और इतने भयानक तेज बारिश तूफान हो रहा था, वो वही मैं जाऊंगा जाऊंगा करके कोई दौड़ के चले गए, हवा साइक्लोनिक वेदर बिल्कुल बारिश में चले गए, लोग पीछे हाय हाय करे माने नहीं चले गए, पूरा नदी भरा हुआ है पानी, नौका वाला नहीं है वो, कौन नौका चलेगा, मरेगा अभी इतनी साइक्लोन उधर है, फिर भी इसे नौका देखे कोई नहीं मिला नहीं, कूद पड़े, अरे मर जाएगा लेकिन कूद पड़े, मृत्यु भय नहीं है, कुछ देख नहीं रहे हैं, इतने बड़े तूफान, इतने बारिश, इतने भयानक नदी का ज्वार, क्योंकि काम के द्वारा अंध हो चुके, देखने पर भी कुछ नहीं दिखता है, सब केवल चिंतामणि दिखता, वही खींचता, कूद पड़े नदी में। अब बेसारा होकर डूबके रहते, एक डेढ़ बड़ी आ रहा था, वो सोचे कोई लकड़ी पकड़ी, वो डेढ़ बड़ी और किसी का नहीं था, उनकी ही पत्नी का था, वही सुसाइड करके मरी थी, अभी बढ़ कर आ रही थी, उसी को सहारा करके नदी पार किए, इस सब के सहारे पार करके इसे कीचड़ में पूरे कपड़ा भीगा हुआ, भागते भागते गए, रात था, रात अंधकार में जा करके पहुंचे। चिंतामणि का तो डबल स्टोरी बिल्डिंग था, और जा करके सारे अंधार रात में कोई कोई नहीं आएंगे, रात अंधार में साइकिलों में तो बंद बंद करके वार्ड उसके ऊपर चारों तरफ घूमे, कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने के लिए। पागल हो गए, कैसे जाऊं कैसे जाऊं। एक सांप लड़का चढ़ रहा था, वो सोचे मुझे रस्सी पकड़ लिया सांप, मैंने सांप को भी रजवत ज्ञान किए। बताओ इतने अंधे हो जाते, आंख था सब देखना चाहते हैं लेकिन किंतु कामांध थे, काम के कारण वो कोई इंद्रिया काम नहीं करता था, ब्लाइंड थे कामांध। वो सांप को पकड़ लिया, सांप हार्ड हो गया जैसे पकड़ लिया उसको, कौन मुझे पकड़ रहा, बिल्कुल हार्ड हार्ड हो गया, तो आराम से पकड़ के चढ़ गए उसको, चढ़ गए ऊपर जा करके चिंतामणि को दरवाजा बंद था धक्का मारे, ये साइक्लोनिक वेदर मिडनाइट में कौन खुला तो देखा, बिल्कुल भीगे हुए कीचड़ मीचड़ कारे सब राम गिरी। अरे आप ये भीषण परिस्थिति इस प्रकार से कैसे, ऐसे क्यों कामांध थे। कभी कोई कोई धनांध होते हैं, धन की मद के कारण इतने अंधे हो जाते हैं, कोई लोग देखते नहीं, मर्यादा पाल नहीं करते, ये बड़े हैं सम्मानी है कुछ नहीं, जो बड़बड़ सब बोलते चले जाए। कोई कोई दम अभिमान के मद के कारण अंधे जैसा दिखने पर भी नहीं देखते इसे बात कर। तो इस प्रकार के जो अंध हैं चक्की होकर की ओ उनसे भी और घटिया है, जिनका आंख नहीं है वो तो फिर भी बेटर है, उनसे घटिया कौन है, जिनका आंख है लेकिन काम के कारण मद के कारण मोह के कारण जो अंधे की जरा देख नहीं पाते, इस प्रकार तो उनसे घटिया। और उनसे भी और घटिया कौन है, जिनका आंख तो है और ऐसे कामी फामी ज्यादा नहीं है। अब आपने होशियार भी समझते हैं, चालाक भी समझते हैं और चालाक की तरह काम भी करते हैं, लेकिन जीवन के लक्ष्य को जो नहीं जानते, जीवन के लक्ष्य और कुछ मान बैठे। आपने जीवन के लक्ष्य क्या है, शरीर की सुख इंद्रिय द्वारा सुख भोग करना, यही मरा लक्ष्य। जैसे कि उनका पर फिलोसफी दर्शन निकला है ना, चार्वाक दर्शन है, जावत जीवेत सुखं जीवेत धृणं कृत्या घृतं पिबेत। अरे भाई जीव भाई जब तक जीवन फिर थोड़ी मिलेगा, गारंटी है जब तक जियो घी पियो, पैसा नहीं तो लोन करके कर्ज लेकर कर्ज करके पियो तो क्या पता, भस्मीभूत से मर जाएगा, जला देंगे फिर क्या पता, पता ही नहीं। उन्होंने विश्वास भी नहीं करते हैं कि रिवार्थ पुनर्जन्म होता करके, मानते ही नहीं, बोलते क्या प्रमाण है पुनर्जन्म का, क्या प्रमाण है, तुम तेरा भाई अलग अलग क्यों हुए, भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो बाप और माँ तो एक ही है, ये प्रोडक्ट दूसरा क्यों हुआ, भाई जब एक ही फैक्ट्री है एक ही मैन्युफैक्चर है एक ही जगह था, प्रोडक्ट तो एक ही निकलना चाहिए ना, ये प्रोडक्ट क्यों अलग अलग हुआ, अलग कलर अलग स्वभाव अलग अलग क्यों हुआ सब, उसको पूछो तो गड़बड़ा जाएंगे। सारे कर्म के परिणाम ये नहीं समझ पाते, बस ऐसे और कुछ उनसे भी भद्दे मूड है और घटिया है, जो बहुत हाईली लर्न एंड क्वालिफाइड सो कॉल्ड एजुकेटेड, लेकिन माया ने उनके ज्ञान को चुरा लिया है, भगवान को नहीं मानते, गालियां देते, क्यों भगवान को मानते सब, ये सब पता नहीं ये लोगों का क्या होगा, हरे कृष्ण इसमें क्या होगा, हरे कृष्ण से क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा, अरे जब जियो तो ईमानदारी से जियो, ये क्या होगा, किसी का बुरा मत करो, ईमानदारी से जियो, सब करो, ऐसे घमंड नहीं पूछो, माफ करना, ईमानदारी किसी को कहते हैं, क्या समझते ईमानदारी का मतलब है, ईमानदारी का मतलब सच्चाई से काम करो, हाँ आप जो किसी को दूसरे के वस्तु नहीं लेना है मैं अपना लेता हूँ, एक्चुअली ईमानदारी इसी को कहते हैं, जो दूसरे के चीज को उससे छीनेगा नहीं, अपना स्थिति से अपने से रहेगा, अपना जो टैक्स जमा करना टाइम से अपना रहेगा, जितना देना है देना, नहीं देना नहीं देना, कोई चोरी नारी गड़बड़ी ठगी काम नहीं करेगा, चीटिंग काम नहीं करेगा, उसमें तो ईमानदार नहीं देते उसे। तो उनको पूछो ठीक है, तो दूसरे का सामान नहीं लगा, बिल्कुल सही देता है, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक बिल टाइम पर जमा करता है, पानी बिल जमा करता है, टैक्स चोरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ईमानदारी है, सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे तथा कथित ईमानदारी को बोलो, बोलो ठीक है तू अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल लकड़ी लगा करके बिल कम नहीं करता, जो होता है टाइम पर डेट पर दे देता है, उसी को बोलता है ईमानदार, तुझे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तो दिन में दो तीन बार भी कट भी जाता है और वो कितने पैसा खर्च कर वायरिंग करना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रिक बिल जो लाइट लेता है तूने, तू नहीं तेरा बाप, बाप के बाप भी ले रहे, तेरे जन्म से पहले था और कभी एक दिन लाइट कटअप नहीं हुआ, कंटिन्यूस उसका बिल तुझे भरा, तू सांस ले रहा है उसका, तेरे बाप का है, पानी पानी पी रहा है, जमीन में रह रहा है, तू लेकर आया था क्या जमीन 2000 फुट 2000 गज में शुगर में लेकर आया था, ये तेरा है क्या? तू बोलता है कि अपना समन से मैं चल रहा हूं किसी दूसरे, ये सब तेरे बाप का है क्या? किसका समन है, किसका है? ये तो सब नेचर है, नेचर किसका है, नेचर क्या है, नेचर किसका है? भगवान ठोट पीट करके छाती में हाथ पीट करके कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, प्रकृति के मालिक मैं हूं, मेरे अध्यक्षता से काम करते। अभी तक भगवान जब से बोले अभी तक कोई माइकेलाल है जो इस बात को काट दे, कोई बोले नहीं मैं हूं करके, कोई है नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो है वही है, कोई नहीं हो सकता, जो है नहीं सकता तो वही मालिक है, उनको मानना पड़ेगा कि मालिक है, खुलकर बोलता है मैं मालिक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, कौन कह सकता है वहां, कोई कह सकता नहीं, जो है वही कह सकता, पब्लिकली खोलकर अनाउंस करता नहीं मालिक, इस मालिक का तू तेरे दादा परदादे पीढ़ी से खा रहा है, तुम्हें क्या दे रहा है, उनको थोड़ा थैंक यू कहने के लिए आपका मन में विचार नहीं होता, नंबर वन बेईमान, इसी तो बेईमान कहते हैं, जिंदगी भर से पीढ़ी तक उनका खा करके उनके नाम में, तो बोलते हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, निर्लज बेईमान कहीं के कैसे नहीं, जो एक सेकंड भी उनके कृपा के बिना जी नहीं सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करके जीते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ करना चाहिए, यही तो है सचोटता। अरे अगर आप रास्ता में जाते हैं, कोई बस फेल हो गया, कोई आपके लिफ्ट में ले लिया, कोई 5 रुपया का ऑटो में चले जाते, ऑटो मिला नहीं, कोई लिफ्ट ले लिया, तो उसको कितने बार थैंक यू कहते हैं आपने, जब देखा होता है भाई साहब थैंक यू आपने मदद की, थोड़ा सा 5 रुपया का मदद के लिए कितना थैंक यू कहना पड़ता है, तो जीवन भर के लिए तुझे नहीं तेरे सपरिवार, तूने पूरे बड़ी खानदान से जो मदद ले रहे हैं और हर मिनट में ले रहे हैं, उनके लिए क्या कोई तरह कर्तव्य नहीं है, यही है कृतज्ञता, यही है बेईमानिता, नमक हराम यीशु कहते हैं। तो इसलिए केवल जीवन की लक्ष्य यही है, जिन्होंने हमको जीवन दिया, जिसने दिया उसको जाने और उन्हीं के ऊपर केवल वफादार बनकर के जीवन, यही होना चाहिए। तो इसलिए सत्यव्रत महाराज कहते मैं तो इस बात को समझा हूं, इसलिए मैं आपको मेरे नेता मेरे गुरु करके मानता हूं, लेकिन जो मूर्ख ऐसे हो नहीं जान पाते, नहीं मान पाते और गुमराह में पड़े हैं, इधर उधर चाक चक के ग्लैमर देख करके फंसते हैं, ऐसा नहीं। तो गुरु किसको माना जाए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, किवा न्यासी किवा विप्र सूत्र के नए, चाहे कोई सन्यासी हो, कोई पक्के कोटि के ब्राह्मण हो, लंबे चौड़े गोरे तक तक हो, बाल बड़े बड़े हो, निर्बाल हो, कुछ भी हो, ये सब के द्वारा गुरु जी का सिलेक्शन नहीं होता, गुरु को सिलेक्शन करने के लिए एक ही बात, जो कृष्ण को जानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, यही गुरु है, वही गुरु। भगवान ने तो अड़क दे दी, बोले आप सब गुरु बन सकते हैं, बोले कैसे, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बाद दूसरे को कहो गुरु, तो जो बहुत कुछ बोलता लेकिन कृष्ण की बात नहीं बोलता, ये गुरु नहीं हो सकता, यही एक ही मात्र पहचान भगवान का कहना है, जो बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन कृष्ण के अलावा जो बोलता है ये सारे बकवाद है, वो चेला भी नहीं बना गुरु क्या बनेगा। तो गुरु वही है जो कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण के लिए बोलते हैं, कृष्ण के बारे में बोलना कृष्ण, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं, वही सदगुरु है जो कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को पालन करता है और दूसरे को उपदेश करता है, कृष्ण जो बताए उसको मानना और उसको बोलना, यही ओरिजिनल गुरु का कर्म, असली गुरु का कर्म, बस दैट्स इट। इस प्रकार किसी व्यक्ति का, कोई कृष्ण भक्त का संग करके कृष्ण को जानने का समझने का प्रयास करो, यही जीवन की सार्थकता है। ये बात को सत्यव्रत महाराज जिन्होंने अभी इस मन्वंतर के मनु है वही श्रद्धादेव होंगे भगवत कृपा से, इस मन्वंतर का, इस सप्तम मन्वंतर का वही मनु महाराज है, वही मनु है जिनको वामन देव उनके साथ में रहते हैं, भगवान वामन देव उनके साथ में है, वही श्रद्धादेव मनु सूर्य पुत्र उन्हीं का यह कहना है कि जीवन के एकमात्र लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, भगवान को समझना। भगवान समझने का हमको एक हाथ काटने कैसे बोले सरल तरीका है, कृष्ण को जानो कृष्ण भक्तों के संग करके बस, कृष्ण भक्त। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे उत्तम कोटि के गुरु है, पूरे जगत आचार्य है, उन्होंने कुछ नहीं के संस्था के नाम ही कृष्ण कॉन्शियसनेस दे दिए, बोले हमारे सोसाइटी का नाम भी कोई लिखेगा पढ़ेगा बोलेगा सुनेगा वो उनका भी उद्धार हो जाएगा, सोसाइटी का नाम बोलते ही वो सोसाइटी का अंदर आएगा तो बाहर के बाहर में बोर्ड पढ़ेगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, ये कृष्ण का नाम है बोर्ड में, केवल बाहर खड़े होकर बोर्ड भी पढ़ दे तभी भी, और अंदर आए तो फिर कहना है क्या, है ना। वही सचमुच जगत आचार्य है, इन्होंने पूरे सारे जगत के कृष्ण बात कहे, कृष्ण के ज्ञान दिए, कृष्ण को कहलाए सब, जो भगवान कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये इन्होंने करके दिखाया, वास्तविक जगत गुरु के ख्याति उन्हीं को होना चाहिए, उन्होंने किया कृष्ण को, जितने कृष्ण के बारे में जानते इतने लोगों को बताओ, कृष्ण को उपदेश पालन करो, इसी में ही जीवन की सार्थकता। इस प्रकार सत्यव्रत महाराज के इस कथन का यही निष्कर्ष होता है कि हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस प्रकार नाना प्रकार के चाक चक्के से गुमराह न हो करके किसी प्रकार से कोई कृष्ण भक्त के संग प्राप्त करके उनके शरणागत हो करके कृष्ण को जाने माने और जीवन को सफल करे। हरे कृष्ण।